الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. صدق الله العظيم. My most honorable and respected brothers, first of all, I want to apologize for arriving slightly late. It was because of the traffic conditions and the rain. It's a blessing too at the same time, and it also causes some bit of delays. But alhamdulillah, by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala, we all are here. And we want to take this opportunity, first of all, to welcome all of you to this, inshallah, very informative session, which will also be an interactive session. We call upon our honorable guest, our most esteemed and distinguished guest to address us. I would like to briefly introduce him so that we have an idea of the personality that is in front of us today. So, alhamdulillah, it gives me great pleasure to introduce to us today one of the esteemed ulama of our times. And I say this without exaggeration, that we have in front of us a personality who's world-renowned, alim and scholar, Hazrat Maulana Khalid Saifullah Rahmani, who hails from Hyderabad in India. And Maulana is a person who is an internationally recognized alim and scholar. Maulana sits on many, many panels and on many boards and in many ulama organizations. He is an esteemed member of many international ulama bodies and organizations, and so, alhamdulillah, we have this great personality in our midst. Maulana is the founder and rector of various educational institutions in India. If we have to just go through the list of the institutions, it will take enough time. In the interest of time, I will cut this introduction as short as possible because I would like you to benefit directly from Maulana. He is also the spokesperson and the Secretary General of the All India Muslim Personnel Board. The Muslim Personnel Board of India is one of the most respected bodies in India today, in the Muslim world of India, and they deal with the government on issues facing the Muslim community, especially when it comes to family laws, etc. Maulana is also the Secretary General of the Islamic Fiqh Academy of India, which is a very respected body, and they have produced volumes of works on various aspects of fiqh. And this itself is such an intensive position and such a occupying position for Maulana in terms of work and output. But notwithstanding that, he still fulfills so many other roles in his capacity as a great Islamic scholar. And today we are very fortunate to have him here in Durban. And Maulana will be addressing us particularly on aspects of trade and commerce and business, how to bring the blessing of Almighty Allah subhanahu wa ta'ala into our commerce and our business, what are the factors that bring the blessings in, what are the factors that actually remove that blessing and barakah. So Maulana will be giving us some important guidelines on this subject matter. Before I forget, I also want to introduce on my right hand side a young dynamic alim who also happens to be the son of an illustrious father, an illustrious son of an illustrious father, Maulana Umar Abidin, who is the son of Hazrat Maulana. Himself is a very great and learned scholar in his own right, and he manages many of the institutions set up by Maulana, and he himself travels internationally and is part of many international boards. So today we have, alhamdulillah, this dynamic team, very rarely to be seen. We have a father and son team. We have these personalities in front of us. I cannot explain to you how fortunate we are to have them with us today. Maulana is in such demand that every country of the world is asking for him to come and conduct and host programs. And today we are fortunate that we have him here with us in Durban. So without much further ado, I'm going to request Hazrat Maulana to address us, give us some pearls of wisdom, and I will translate it from the Urdu into the English. And at the end of it, inshallah, we will have the interactive session where you will be able to ask your questions and those questions will be responded to, inshallah.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. محترم بھائیو، مجھے جو موضوع دیا گیا ہے اس کے لحاظ سے یہ وقت بہت مختصر. ہم لوگ حیدرآباد میں تاجروں کے لیے ورک شاپ رکھتے ہیں صبح 8-9 بجے سے لے کر نماز عصر تک، تو اس میں بہت سے مسائل کا احاطہ رہتا ہے. میں والدین سے درخواست کرتے ہیں دار الاحسان کے تحت یہاں بھی اس طرح کا بھرپور ورک شاپ رکھنے کا اہتمام کریں، ان شاء اللہ اس کا بڑا فائدہ. محترم بھائیو، پہلی بار یہ کہنی ہے کہ دنیا کے مذاہب میں اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جس میں دولت کو اور دولت کے کمانے کو عزت کی نظر سے دیکھتا ہے. آپ اس ملک میں عیسائی بھائیوں کے درمیان رہتے ہیں، اصل عیسائی مذہب میں مال کمانے کو پسند نہیں کیا گیا، اسی لیے جو ان کے مذہبی رہنما ہوا کرتے تھے وہ لوگوں کے نذرانوں پر زندگی گزار जाते थे वो उनके लिए माश कमाने को माल कमाने को बड़ा समझा। इसी तरह हमारे एक जमाने को ऐसा गुजरा ईसाई भाइयों पर जिसका कुरान ने जिक्र किया है कि उन्होंने रहमानियत का रास्ता अख्तियार कर लिया। रहमानियत का मतलब यह था कि वो दुनिया से बेताल्लुक, खाने से बेताल्लुक, शादी ब्याह से नश्ते थे, यहां तक के बाद लोग वो थे सफरे पहनते थे। दुनिया का एक बड़ा मजहब हिंदू मजहब है, उनके यहां भी माल कमाने को बहुत बुरा समझा जाता था। आज भी उनके यहाँ जो आला मजहबी पेशवा होते हैं उनको पैसे कमाने की इजाजत नहीं मिलती। जो पंडित होते हैं, जो पुरोहित होते हैं, जो शंकराचार्य होते हैं, इसी तरह दुनिया का एक और बड़ा मजहब बुद्धिस्टों का मजहब है। उनके यहाँ भी ये बात थी कि जो मजहबी लोग होते थे, जो अल्लाह वाले लोग उनके अकीदे के मुताबिक होते थे, उन पर ये पाबंदी होती थी कि वो लोगों की दक्षिणा पर, लोगों की मदद पर जिंदगी गुजारे, उनके लिए कमाने को दर्जे माश अख्तियार करने से चाहिए। जैसे अल्लाह ताला ने हमें जो दीन दिया है वो दीन करेंगे, इसलिए इसमें इस बात को तो नापसंद किया गया कि आदमी माल में तो दौलत के हासिल करने में इस तरह क्यों हो जाए कि वो दीन को बिल्कुल भूल जाए, अल्लाह को भूल जाए, प्रमोट कर दे। लेकिन माल को और माल के कमाने को बुरा नहीं समझा गया। कुरान मजीद में माल के लिए खैर का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, खैर के माने भलाई और अच्छी चीज को होते हैं। कुरान मजीद में शुक्र की तारीफ की गई है और शुक्र कहते हैं कि अल्लाह की नेमत किसी के पास हो और वो अल्लाह को याद रहे। कुरान मजीद ने कहा इज़ा क़ुज़ियत अस्सलातु फ़न्तशिरू फ़िल अर्ज़ वाब्तग़ू मिन फ़ज़लिल्लाह। अल्लाह ताला फरमाते हैं जब नमाज पढ़ लो तो ऐसा नहीं है कि तुम मस्जिद में बैठे रहो, सिर्फ तस्बीह ही पढ़ा करो, तिलावत ही किया करो, बल्कि फ़न्तशिरू फ़िल अर्ज़ वाब्तग़ू मिन फ़ज़लिल्लाह, अल्लाह की जमीन में फैल जाओ, बिजनेस करो, तजारत करो, रोजी कमाओ। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्न कस्ब अल हलाल फ़रीदतुन बाद अल फ़रीदा, फर्ज नमाज के बाद सबसे अहम फरीजा यह है कि आदमी हलाल रोजे हासिल करे, ताकि अल्लाह ने जो हुकूक उससे मुतल्लिक किए हैं वो उन हुकूक को अदा कर सके। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल मोमिन अल क़वी खैर मिन अल मोमिन अल ज़ईफ, ताकतवर मोमिन कमजोर मोमिन से बेहतर। ताकतवर मोमिन में हर तरह की ताकत शामिल है, जिस्मानी ताकत, इल्म की ताकत, दौलत की ताकत। तो इस्लाम एक ऐसा फितरी मजहब है जिसमें माल, अगर माल का हक अदा किया जाए तो उसको बुरा नहीं समझा, और माल के हासिल करने की लोगों को तरबीत दी, और उसमें भी माल के कमाने के बहुत से जराए हो सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतर जरिया तजारत, बिजनेस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अत्ताजर सदूर माल नबीन व सिद्दीकीन व शहदा, कयामत के दिन सच्चे और अमानतदार ताजर का हश्र अंबिया के साथ, सिद्दीकीन के साथ और शहदा के साथ होगा। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि माल कमाने के जितने ज़राए हैं उनमें सबसे बरकत वाला जरिया, सबसे अहम जरिया तजारत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद तजारत फरमाई है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने तजारत की है, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने तजारत की है, हज़रत उस्मान ग़ज़नी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बड़े ताजरों में थे, छोटे मोटे तजारत हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाई है, क्योंकि वो हुज़ूर की खिदमत में मशगूल थे इसलिए उनको मुस्तक़िल तौर पर बिजनेस में रहने का मौका नहीं मिला। حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جزیرۃ العرب کے بڑے تاجروں میں تھے. تو اسلام نے مال کی اگر جائز طریقے پر حاصل کیا جائے, مال کمانے کی اگر شریعت کے حدود میں ہو, بالخصوص تجارت کی اگر اسلام کے احکام کے مطابق ہو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت mentioned that the time allocated for this talk is very short and it is not possible to do justice to the topic that we are discussing in such a short time. He says in Hyderabad we normally hold workshops for businessmen that starts at 8 in the morning and ends at 5 in the evening, and Hazrat requested that Darul Ihsan should look at holding such kind of workshops for our business community in the future, inshallah ta'ala. Hazrat then went on to explain that Islam is the only religion in the world that has a positive outlook towards wealth and earning of wealth and regards it as something that is virtuous. Whereas if we look at Christianity or Hinduism or Buddhism, etc., we find that essentially they frown upon wealth and they regard it as something evil, and therefore their religious class are people who will never earn on their own, but they will depend on their followers, etc., to support them financially. Hazrat says that in Islam there's no prohibitions in earning, in owning wealth. These are things that are very much encouraged. In fact, the only thing that is discouraged is such an absorption in wealth that it actually becomes a distraction from our very purpose of life on earth. Otherwise, the Quran refers to wealth as khair, which is good, and the concept of shukr is for people who have financial means. They are the ones who will make shukr to Allah subhanahu wa ta'ala. Quran says that you go out and search for your sustenance after you completed your salah, especially salatul jumu'ah. That is, we're not supposed to be sitting and reading tasbih the whole day and do nothing about our financial needs, etc. These are things that Islam has encouraged. The fulfillment of rights can only be done when a person earns and supports his family. Hazrat mentioned that a strong believer is better in the eyes of Allah than a weak believer. And a strong believer doesn't only refer to physical strength, but it refers to being strong in every sense, intellectually, spiritually, and even financially. To be strong is something that is encouraged in the hadith of Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam. So we find that there are many means of earning. But amongst all the means of earning, the most superior and the best is trade and business. And there's a hadith of Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam to that effect, where he said that the honest businessman will be raised on the day of judgment with the prophets and the siddiqeen, the pious and the martyrs. He will be raised with them on the day of judgment. Goes to show what a high standard he is, what a high position he is for businessmen and for trade in Islam. Imam Ghazali rahmatullah alayhi mentions that of all the means of earning, the best is trade and business. And that is why all the great personalities in the history of Islam, particularly our beloved Nabi sallallahu alayhi wa sallam himself was a trader. We know that before, in the earlier years of his life, when he did trade under Khadija radiallahu ta'ala anha in a partnership with her, then Sayyidina Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu, Sayyidina Umar, Sayyidina Usman was amongst the most renowned traders of the time. Sayyidina Ali radiallahu ta'ala anhu also undertook some kind of trade, though he was more engrossed in services to Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. So the picture is that trade and business is something that Islam has encouraged very much, and it is something really virtuous and rewarding.
لیکن یہ بات ضروری ہے کہ تجارت اللہ تعالیٰ کے حکم کے دائرے میں. دیکھیں قرآن میں نماز کے بارے میں فرمایا گیا پھر نماز اللہ تعالیٰ کے ذکر کا ذریعہ ہے. اقم الصلاۃ للذکر, نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے, میری یاد کے لیے. اللہ تعالیٰ نے جہاں تجارت کا ذکر فرمایا, اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ, جب نماز ہو جائے زمین میں پھیل جاؤ, روزی تلاش کرو. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا, اور اللہ تعالیٰ کا خوب ذکر کرو. یعنی عبادت میں تو اللہ کا ذکر کافی ہے, اور تجارت میں اللہ کا ذکر کثیر ہونا چاہیے, بہت زیادہ ذکر ہونا چاہیے. کیونکہ عبادت میں آدمی اللہ کی طرف ہی متوجہ ہوتا ہے, لیکن تجارت ایسی چیز ہے جو آدمی کو اللہ کی طرف سے غافل کر دیتی ہے, اس لیے اس میں اور زیادہ اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا قرآن پاک نے حکم دیا ہے. تو جو قرآن حدیث کے احکام ہیں جن کو علماء سے معلوم کیا جا سکتا ہے, اس کی تفصیل پر بھی بتانے کا موقع نہیں ہے, اس کے اہتمام کے ساتھ اس پر عمل کرتے ہوئے تجارت کرنی ہے. تجارت میں کن باتوں کا حکم دیا گیا ہے, کن باتوں سے منع فرمایا گیا ہے, یہ تو بہت لمبا موضوع ہے, لیکن میں صرف دو تین باتیں آپ سے ذکر کروں گا. دو ایسی باتیں جن کو منع کیا گیا ہے, اور ایک ایسی بات جن کا حکم دیا گیا ہے. جن باتوں سے منع کیا گیا ہے ان میں سب سے اہم سود ہے, ربا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لعن اللہ آکل الربا ومؤکله وصاحبه وشاہدئی, اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو سود کے کھانے والے پر, لینے والے پر, سود دینے والے پر, سودی کاروبار و معاملات کو لکھنے والے پر, اور سود کے گواہ دینے والے پر. اتنی زیادہ تاکید کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور چیز کو شاید منع نہیں فرمایا. بنو نجران کے عیسائی تھے, ان کا وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا. انہوں نے عیسائی اسلام کا قبول نہیں کیا, لیکن معاہدہ کیا, امن و امان کا معاہدہ کیا. تو حضور نے فرمایا کہ اس معاہدے میں بنو نجران کے تمام عیسائی شامل ہوں گے, الا من اربا, سوائے اس کے پوری کاروبار کرے, سود کا لین دین کرے, وہ ہمارے اس معاہدے میں شامل نہیں ہوگا. تو آپ اندازہ فرمائیے کہ ایک درجے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اعتبار سے کسی آدمی کے کفر پر رہنے کو دوبارہ فرما دیا, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کو دوبارہ نہیں فرمایا. تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ سود کتنی خراب چیز ہے. اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا, دعو الربا والربا, سود سے بھی بچو, اور اگر کہیں سود کا شک ہو تو اس سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ. تو خاص طور پر ہمیں اپنے کاروبار کو سود سے بچانا چاہیے.
حضرت went on to explain that now that we have understood the status of wealth and trade in Islam, it is extremely important that we conduct our business and trade within the parameters of the Sharia, and we do it in accordance with Allah subhanahu wa ta'ala's orders and law. And the reason why this is to be done is because Allah subhanahu wa ta'ala mentions in the Quran, where he mentions the order of establishing salah, then he says that salah is established for the remembrance of Allah. But when it comes to trade, Allah subhanahu wa ta'ala says, spread out on the earth, do trade, but remember Allah excessively. That is, one should remember Allah subhanahu wa ta'ala even more when it comes to these aspects of trade and of transactions, etc. And the commandments and laws and ordinances relating to trade are very many. But Hazrat says, I want to keep it very short and concise. And today I want to touch on two prohibitions and one command or one order. From the two prohibitions, the one is what is called riba and interest. Interest is strictly and strongly prohibited in Islam. Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam has expressed in many words the prohibition very strong words, the prohibition of interest, where he said that Allah curses, Allah lanat comes upon people who take, who give, who write, who witness this transaction, all come within the purview of the prohibition and the curses of Allah subhanahu wa ta'ala. Even the non-Muslims who came to Medina to sign a treaty, the Banu Najran, Nabi sallallahu alayhi wa sallam allowed them to practice their religion. He didn't say they must forsake their religion. But one thing he mentioned, that we will give safety and we will give rights to those people who do not indulge in interest. If anyone among these people indulge in interest dealings, they will not come under the protection of the Muslim community, the Muslim state. So we see that even there, they were allowed to remain on their disbelief, but they were not allowed to indulge in interest because it destroys the fabric of the economy. And Sayyidina Umar radiallahu ta'ala, who was known to have said regarding interest, that leave out interest completely, and anything that leads you to interest or that becomes a factor in enhancing interest, those are the things that should be shunned.
हमारे ताजर भाइयों के आगे कई सूरतें हैं, सूद की ऐसे आ जाते हैं जिनके बारे में लोगों को अंदाजा नहीं होता। जैसे किसी शख्स को कर्ज की जरूरत थी, आपने उसको एक हैवी डिपॉजिट दिया और दुकान उसकी ली बगैर किराए के, ये तय पाया कि इस पर कोई किराया नहीं होगा। जब तुम हमारा डिपॉजिट वापस करोगे तब दुकान तुमको दी जाएगी या उसके बाद तुमको किराया दिया जाएगा। या हेवी डिपॉजिट उसको दिया और बहुत मामूली किराए पर दुकान ले ली, जिस दुकान का किराया 5,000 रेंट होना चाहिए था वो 500 रेंट किराए पर ले ली। ये भी सूद में दाखिल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल कर्ज जर नफा फरो रहेगा, कर्ज पर अगर नफा हासिल किया जाए, फायदा हासिल किया जाए तो वो सूद में शामिल है। इसी तरह अगर किसी आदमी के जिम्मे कर्ज बाकी था, उसने आपका माल उठाया, 1,00,000 रेंट उसके जिम्मे बाकी है, अदा करना चाहिए था 31 दिसंबर को, लेकिन उसने ताखिर कर दिया, 2 महीने देर से फरवरी के खत्म पर उसने पैसे अदा किया। तो यहाँ ऐसा नहीं होता होगा, लेकिन हिंदुस्तान में बहुत से ताजर ये जो 2 महीने की ताखिर की है उस पर इंटरेस्ट लेते हैं, उसको जुर्माने का नाम देते हैं कि ताखिर का जुर्माना है। ये जायज नहीं। अगर आपको उस पर भरोसा नहीं है तो आप उससे कहिए तुम किसी जमीन का कागज दो, सोना रखो हमारे पास, कोई और चीज ऐसी रखो कि जिसके जरिए हम अपना कर्ज अगर तुम देर करो तो हम वसूल कर सकें, यह गुंजाइश है। लेकिन कर्ज की अदायगी में ताखीर की वजह से अगर आपने उससे ज्यादा पैसे ले लिए तो ये सूद में शामिल है, ये शक्ल जायज नहीं है। इसी तरह एक शक्ल है जिसको फिका की इस्तलाह में कहते हैं ज़्यादा ताज्जुल। एक आदमी के जिम्मे आपके 5,00,000 रेंट बाकी है और 31 जनवरी को उसकी अदायगी का वादा है, यह बात तय हुई है कि जनवरी के खत्म पर वह आपको पैसा अदा कर देगा। अब आज आपको पैसों की जरूरत पड़ेगी, आपने उससे कहा कि भाई तुम ये पैसा 31 जनवरी के बजाय 20 दिसंबर को अदा कर दो और हम उसमें से 50,000 रेंट माफ कर देंगे अगर तुम पहले अदा कर दो, बजाय 5,00,000 के तुमको 4,50,000 रुपए देने होंगे, यानी अगर तुम जल्दी दोगे तो इस शर्त पर हम उसमें से कुछ माफ कर देंगे, ये जायज नहीं है। यह भी एक तरह का सूद है, यह भी गोया उस मुद्दत के बदले में आपने पैसा उसको कम किया है, सूद लिया नहीं है बल्कि सूद दिया है। हाँ, अगर 31 दिसंबर यानी 31 जनवरी की तारीख गुजर चुकी, अब उसको पैसा अदा करना चाहिए था, लेकिन वो बेचारा अपनी मजबूरी की वजह से पैसा अदा नहीं कर पा रहा है, तो जो अदायगी की तारीख थी इसके गुजर जाने के बाद, अब अगर आपने उसके साथ सहूलत का बर्ताव किया, भाई तुम अदा नहीं कर पा रहे, चलो हम तुम्हारे कर्ज में से 20% माफ कर देते हैं, बकिया तो अदा कर दो, ये शक्ल जायज है। लेकिन मुकर्रर तारीख के आने से पहले इसलिए कर्ज का कुछ हिस्सा माफ करना कि वो वक्त से पहले कर्ज अदा कर दे, ये जायज नहीं। इसी तरह बहुत सी दफा सूदी कर्ज लेना पड़ता है बैंक से कारोबार के लिए, तजारत के लिए, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल आखिज़ु वल मुअती फीही सवा, सूद लेने वाला और देने वाला बराबर है। बहुत गैर मामूली हालात हो, किसी का इलाज है, ऑपरेशन की जरूरत है, या कोई और ऐसी बड़ी मुसीबत पेश आ गई है, उन हालात में फकहा ने मजबूरी की हालत में लोन लेने की इजाजत दी है, लेकिन कारोबार को बढ़ाने के लिए, उसको तरक्की देने के लिए, किसी प्रोजेक्ट को हासिल करने के लिए, इसके लिए लोन लेने की इजाजत नहीं। तो ये सब मुख्तलिफ शक्लें हैं सूद की जो हमारे यहाँ कारोबार में शामिल हो जाती हैं, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उससे बचें। बहुत सी दफा ऐसा भी होता है कि आपके किसी दोस्त ने कहा कि मुझसे 1 लाख रहम ले लो, तुम क्या कमाओ तुमको मालूम है, मुझे 5,000 रैंड या 1,000 रैंड हर महीना मुनाफा दे दो, ये जायज नहीं। यानी इसको शरीयत में मुजारबत कहते हैं, एक आदमी का इन्वेस्टमेंट हो दूसरे की मेहनत हो, तो इसमें उसूल ये है कि जो नफा हासिल हो उसका परसेंटेज मुतय्यन होना चाहिए। इसका आप बिजनेस करेंगे इसमें जितना नफा होगा, मसलन 50% आप लेंगे 50% हमको देंगे, ये शक्ल जायज। लेकिन यह कि हम 1 लाख रुपए दे रहे हैं, आपको नफा हो नुकसान हो ज्यादा हो कम हो, आप हमको 1,000 रैंड हर माह दे दें, ये जायज है। उसकी बाज दफा एक जायज शक्ल भी थोड़ी तब्दीली के साथ निकल सकती है। मिसाल के तौर पर ईद आने वाली है, यहाँ भी होता होगा हमारे यहाँ हिंदुस्तान पाकिस्तान वगैरह में, ईद के मौके से बड़ी मकदार में कपड़े फरोख्त होते हैं, गारमेंट्स जो हैं उनकी बहुत ज़्यादा खरीद व फरोख्त होती है। तो अब एक शक्ल ये हो सकती है कि आपने उनसे कहा कि भाई एक काम करो, मुझे 1,000 छोटे बच्चों के मिसाल के तौर पर फ्रॉक की ज़रूरत है बच्चियों की, आप इस डिज़ाइन का ये फ्रॉक खरीद कर दीजिए या मैं आपकी तरफ से खरीद कर लेता हूँ। खरीद कर लिया आपने उनकी तरफ से, फिर ये बात तय हुई कि ये फ्रॉक तो हमने आपके लिए खरीदा, अब आपसे मैं खरीद रहा हूँ, ये 100 रैंड का एक फ्रॉक आपके लिए खरीदा हमने और मैं आपसे इसको 110 रैंड में खरीद कर रहा हूँ और 1 महीने के बाद मैं पैसा अदा करूँगा, ये शक्ल जायज होगी। इसको बाय मुराबहा कहते हैं, नफे के साथ किसी चीज को बेचना। दोनों में फर्क यह है कि पहले पैसे का तबादला पैसे से था, अब ये एक सामान का तबादला पैसे से है, तो इसलिए ये शक्ल जायज होगी। बहुत सी शक्लों में अगर उलमा से और मुफ्तियान से पूछा जाए तो वो उसकी जायज शक्ल क्या हो सकती है शरीयत के दायरे में, जिससे आपका सही मकसद हासिल हो जाए, उसकी भी वो रहनुमाई कर सकते हैं।
So Hazrat explained various forms and types of interest that are prevalent in our community, and sometimes we may not even realize that we are indulging in a prohibited transaction that is an interest-based transaction. So it is so important to have knowledge and understanding of the rules, otherwise we could very well be doing something under the impression that it is allowed, whereas in actual fact it be considered to be interest. Now one example, Hazrat gave several examples, because of limitation of time I will just try and touch on one or two. He said, for example, somebody takes a loan straightforward. They owe you an amount of say 100,000 and due date was 31st December, but the person delayed and didn't pay on time, and now we find that it's past the due date, so you start levying an additional amount on that person, then that is exactly what is called interest, and it is strictly prohibited. We cannot levy anything extra on the amount, the capital amount that was given, otherwise it will be regarded as interest clearly. Some people call this a penalty, that we are applying a penalty on someone for late payment, but no matter what we call it, it will still be considered to be interest. Yes, Hazrat says that in a situation like this, if you wish, but there is some place to come away to the front. come away to the front. If, for example, you take some type of collateral from that person to cover that amount that is owing so that the person does not go away with the amount that is due, then that would be regarded as permissible. Also, any kind of debt that attracts some benefit to someone, then that is regarded as riba in Islam. Similarly, we find in another concept which is mentioned in the Hadith Sharif, where a person says that, you know, say someone is owing 500,000 and the due date is 31st of January, but now the creditor wants to call the monies in early, he wants like a settlement discount, or even the debtor wants the settlement discount, and he says, I'll pay you by 20th January or 20th of December, but you have to give me a discount, say 20% of what I'm owing, then that will not be permissible, because again, it is coming back to the time concept. Because you make early payment, so the amount being dropped. So in this case, it will be that the creditor is actually giving interest. And some cases, the debtor is being asked to give interest. In both instances, this will not be allowed. Furthermore, Hazrat says that if, for example, there is a permissible form of this year, and that is when due date has passed, now he can't make the payment. Now, in order to secure your payment, you can encourage him to say, all right, look, if you pay me off, I'll give you a settlement discount. You can't take an early settlement discount, but a late settlement discount, that will be allowed, because now you pass due date. So, these are some of the rules and regulations that apply. Hazrat mentioned that we are not allowed to take any kind of loans from banks, because this is directly under the curse of Allah subhanahu wa ta'ala and Allah's Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Except if it is absolute need, say for example a person had a medical crisis, or you had some kind of a catastrophe, so there's no other way but to get money, but to take it on interest loan. Otherwise, to enhance our trade, and to build our asset base, etc., then it will not be allowed. As I said, another example of what is construed as interest is, for example, someone invested 100,000, and he says to the person with whom he's doing this investment that, look, you give me 1,000 rand a month. How you earn it, where you get it from, is not my problem. You give me 1,000 rand on my investment of 100,000, that will be considered as prohibited. It is a riba, it is not allowed. But if they do it on a percentage basis, then it is allowed. Then it is what is called mudaraba, where you say to the person, listen, you give me annually from the profit earned on this transaction, you give me 10% or 20% or whatever it is, then that will be allowed. But you cannot ask for a percentage on the capital, on the investment amount. That's not allowed. That is riba. Only on the profits that are earned. And obviously, if there's no profits, you gain nothing. And if there's a loss, you share in the loss. This is what is called Islamic finance and Islamic trade. Similarly, Hazrat gave the example of murabaha. Murabaha is what you call a cost plus profit transaction, where, for example, somebody needed to buy some stock to trade. So you buy it initially, and then you resell it on to this person with a profit margin, and this person pays you off over a period of time. Now, outwardly it might look like it is similar to interest, because there too you are taking terms and here too you are taking terms, but the difference is this is based on commodities, that is on money. If it's money or money, it is prohibited, but on commodities it will be regarded as permissible. The bottom line is that there are many such type of transactions in a marketplace, and Hazrat says that it is best to always consult with the ulama and the muftis that what I am doing, is it correct or not, so that we do not taint our earnings.
ایک اور اہم بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت تاکید فرمائی ہے کہ جو بھی خریدنے اور بیچنے کا معاملہ ہو اس کو بالکل واضح ہونا چاہیے. مثلاً آپ نے یہ کہا کہ یہ سامان ہے, اگر دو مہینے میں قیمت ادا کر دو تو اس کی قیمت 1000 ہے, اور اگر 4 مہینے میں قیمت ادا کرو گے تو اس کی قیمت 1200 ہے, لیکن طے نہیں پایا کہ یہ 1 مہینے میں اس کی قیمت ادا کریں گے یا 2 مہینے میں قیمت اس کی ادا کریں گے. ایک بات طے نہیں پائی اور جن کو خریدنا تھا وہ چلے گئے, بیچنے والے جو تھے وہ اپنی جگہ رہے. تو یہ اس طرح معاملہ کرنا چاہیے, کوئی ایک قیمت طے ہو جانی چاہیے کہ ٹھیک ہے ہم 1 مہینے میں قیمت ادا نہیں کر سکتے, 2 مہینے میں ہم اس کی قیمت ادا کریں گے, 1200 رینڈ میں ہم اس کو لیں گے. اس سلسلے میں ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ کاروبار اور تجارت میں کثرت سے ایسا ہوتا ہے لوگ اپنے بچوں کو بھی شامل کرتے ہیں. فرض کر لیجیے کہ آپ کے 4 بیٹے ہیں, آپ نے کاروبار شروع کیا, پہلا بیٹا اس نے 10th تک پڑھا یا انٹر کیا, آپ کو کاروبار میں ضرورت ہوئی, آپ نے کہا بیٹا تم میرے کاروبار میں آ جاؤ, اب وہ آپ کے ساتھ لگ گیا, ابھی سے وہ کام کر رہا ہے. دوسرا بیٹا آپ کا اس سے 5 سال چھوٹا تھا, وہ ڈاکٹر بنا اور اس کے ذریعے اس کو ایک اچھی آمدنی کا ذریعہ حاصل ہوا. تیسرا بیٹا تھا آپ کا, کاروبار شروع کرنے کے 15 سال کے بعد بڑے بیٹے کو شامل کرنے کے 10 سال کے بعد آپ نے اس تیسرے بیٹے کو اپنے کاروبار میں شریک کیا. ایک اور چھوٹا تھا, اس کو 10 سال نہیں 15 سال کے بعد آپ نے اپنے کاروبار میں شریک کیا. اب موت تو ہر انسان کے ساتھ ہے, جب آدمی کی موت ہوتی ہے تو گھر میں اختلاف پیدا ہوتا ہے. بڑا بیٹا یہ کہتا ہے کہ ہم نے اس کاروبار میں والد کی مدد کی وجہ سے تعلیم حاصل نہیں کی, کوئی الگ ہم نے کوئی پیشہ اختیار نہیں کیا, اس لیے ہمارا شیئر اس میں زیادہ ہونا چاہیے. دوسرے بھائی کہتے ہیں کہ بھائی ہم بھی اولاد ہیں اور یہ سب باپ کی ملکیت ہے تو برابر حصہ ہونا چاہیے. تو جو 15 سال کے بعد کاروبار میں لگا, جو 10 سال کے بعد لگا, جس نے الگ سے میڈیکل تعلیم حاصل کی اور اس کے ذریعے وہ پیسے کماتا ہے, اور جو بالکل شروع سے والد کے ساتھ لگ گیا, تو اب اس میں اختلاف بھی ہوتا ہے اور انصاف بھی ہوتا ہے. بعض دفعہ تو بڑا بیٹا سب پر قابض ہو جاتا ہے, دوسرے بچوں کو محروم کر دیتا ہے, اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے بچے اصرار کرتے ہیں کہ ان کو بھی برابر ہی ملنا چاہیے, زیادہ نہیں ملنا چاہیے. یہ اس لیے ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے بیٹوں کو اپنے کاروبار میں شریک کرتے ہیں تو ہم اس کی حیثیت واضح نہیں کرتے. دیکھو آج سے تم ہمارے کاروبار میں شریک ہو رہے ہو, 1 سال تمہارا ٹریننگ پیریڈ ہوگا, اس میں تم کو الگ سے کچھ نہیں دیا جائے گا. 1 سال کے بعد تمہاری حیثیت ملازم کی ہوگی, تمہاری سیلری فی الحال ابھی سے لے کر 5 سال تک مان لیجئے کہ 5000 روپے رینٹ مہینہ, یہ تمہاری سیلری ہوگی. تم رہو گے تمام بچوں کے ساتھ, لیکن یہ تمہارا اسپیشل حق ہوگا. یا یہ کہ تم ہمارے ساتھ کام کرو, تمہارا اس کاروبار میں مثلاً 15% شیئر ہوگا دوسرے بھائیوں کے مقابلے میں. تو جب والد دنیا سے جائیں तो या तो वो सैलरी वो शुरू से ले रहा होगा या हिसाब करके ले लेगा, या जो शेयर उसका मुतय्यन किया गया है उसका शेयर निकालने के बाद जो बकिया है वो सब भाइयों में तकसीम होगा। तो इससे इख्तलाफ भी नहीं पैदा होगा और सबों के दरमियान इंसाफ भी होगा। लेकिन आमतौर पर हम लोग कारोबार में इसको मुहिम रखते हैं, बच्चे शर्माते हैं कि मैं कैसे वालिद से कहूँगा आप हमारी हैसियत मुतय्यन कीजिए। वालिद के दिल में ये ख्याल आता है कि यह सब तो हमारा ही है, इसको क्या हक है कि हमसे तनख्वाह का मुतालबा करे या हमसे इसमें अपने हिस्से का मुतालबा करे, ये जायज नहीं है शरीयत में। जब अपने बच्चों में भी जब किसी को दाखिल किया जाए तो उसका शेयर मुतय्यन किया जाए। सहाबा ने अपने बाद दफा अपने बाद औलाद को जैसे हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने उन्होंने शुरू से जिसने वालिद के साथ खिदमत की उसको खुसूसी तौर पर अपने दूसरी औलाद के मुकाबले में बढ़कर दिया। ये भी एक पहलू है कि हमारे कारोबार में हर बात को और हर चीज को वाज़ह होना चाहिए।
In the second very important principle regarding business and trade, the first one Hazrat mentioned about the prohibition of interest, which was explained very clearly. The second point he mentioned is that there must be no ambiguity as far as our financial matters are concerned. That we leave things unclear. There's no clear picture of what is expected. For example, even a certain transaction, you can have a cash price and you can have a credit price. But if the cash price or the credit price was not adopted at the time of the transaction, then that would be wrong or it would be prohibited. Or, for example, you have a credit price for a 1 month and another price for 2 months or so on. If you didn't fix which of the options you're adopting, then that will be regarded as prohibited. For example, somebody says that, look, I'll pay you for this item in 2 months. If I pay, then I'll pay 1,000 rand. But in 4 months, it's 1.2 that you're going to have to pay. So now they walked away from there without fixing the period. So that will be regarded as a null and void kind of transaction. The second thing Hazrat mentioned regarding this unambiguousness is when it comes to, for example, a family business. This is where we have a lot of confusion. A man has 4 sons, for example. Now, the father started the business off in the beginning. He needed manpower, so he took his eldest son. He didn't let him complete his schooling, so he took him, put him into the business. The second son, by the time he came of age, he could go and study. He went and became a doctor. The third son joins the business after 10 years. The fourth son joins the business after 15 years. Now, Hazrat says death is inevitable. Somewhere along the line, the father is going to have to leave this world. Now what happens to the sons after the father passes away? The eldest son says, look here, I am here from day one. On my strength, you people have earned what you have earned, so I am entitled to more. The others say, no, we are equal shareholders. Our father left it behind for all of us. Now the huge problem arises at that time. So Hazrat says that it is very, very important that we make things clear up front, so we don't have this type of situation. Now what should have happened, the father, if he took the son in, say for example, the first year he says, listen, you're not entitled to any remuneration because you are in training. I'm giving you training, I'm teaching you, so there's no remuneration. But by the second year he could, for example, fix a salary for you. So he becomes employed by the business. Now as an employee of the business is entitled to a monthly salary, so he's getting paid out in that manner. Or otherwise, he could be given a shareholding. He could become a partner, and in lieu of his effort that he's putting in, obviously he's got equity in the business, so he holds a bigger share than the others. When the others come in later, then when the father passes away, it's not that he's deprived, yet he's put the most amount of effort. That this leads to all kinds of problems and allegations and litigation and all of that. Hazrat says that even the Sahaba Ikram, if you see the example of Umar radiallahu ta'ala anhu, one of his sons joined him in his business. Umar radiallahu ta'ala anhu fixed an additional portion for him in exclusion to the other sons who hadn't joined him in his business affairs. So in other words, they also conducted their business matters in such a manner that there was justice and fairness for all.
आखिर मैं आपसे कहना है कि सबसे अहम बात यह है कि तजारत में अल्लाह ताला का जो हक है उस हक को अदा किया जाए. ये दो हक है. एक हक तो है ज़कात, पूरे माल का हिसाब करके ज़कात अदा करना चाहिए. जो ही आदमी कुछ खैर खैरात कर दे इससे ज़कात अदा नहीं होती. अब आप देखिए अभी मग़रिब का वक्त शुरू होगा, अगर आप पूरे मग़रिब के टाइम में नफल नमाज पढ़ते रहे और मग़रिब के फर्ज की नीयत से आप 3 रकअत फर्ज नहीं पढ़े तो आपकी नमाज अदा होगी, नमाज अदा नहीं होगी. इसी तरह यूं ही आप कुछ खैर खैरात करते रहे लेकिन बाज़ाब्ता शरीयत के उसूल के मुताबिक हिसाब करके ज़कात अदा नहीं करें तो ये गुनाह आपके दामन पर आपके कांधों पर बाकी रह जाएगा. तो इसलिए ज़कात अदा करनी चाहिए. ज़कात की वजह से माल में बरकत पैदा होती है और इंसान इक़्तिसादी आफतों से जिससे इंसान की जान पर आफत आती है माल पर भी आफत आती है तो उससे अल्लाह ताला इंसान को बचाते हैं, उसकी हिफाजत फरमाते हैं. दूसरा हक यह है कि ज़कात तो कम से कम ज़रूरी चीज़ है लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्न फिल माली हक्कन सिवा ज़कात, ज़कात के अलावा भी माल में हक है. जैसे मैं एक मिसाल से बताता हूँ, बीवी का हक है शौहर पर कि वो बीवी के खाने का इंतज़ाम करे, साल भर में इतने जोड़े कपड़े का इंतज़ाम करे जिससे उसकी ज़रूरत पूरी हो जाए. हमारे फ़क़हा ने लिखा गर्मा के मौसम के लिए, सर्दी के मौसम के लिए, बीमार पड़े तो उसका इलाज करा दे. लेकिन आप सोचिए किसी मियां बीवी की ज़िंदगी इतनी बात से खुशगवार ज़िंदगी गुजर सकती है. बीवी ने ख्वाहिश की कि मेरे लिए फ़लाँ कपड़ा ले दो, फ़लाँ की शादी है, तकरीब में जाना है, आपने कहा कि 3 जोड़ा कपड़ा मेरे जिम्मे था वो मैंने उनको दे दिया, अब इसके बाद तुम्हारे कोई जिम्मेदारी नहीं है. आप सोचिए ताल्लुकात अच्छे रह सकेंगे. आपने खाना खाने का उसके इंतज़ाम कर दिया, बीवी ने कहा कि आज हम चाहते हैं कि फला चीज़ बनाए, फला चीज़ लाइट आए, आइसक्रीम आए, मिसाल के तौर पर आपने फहरिस्त निकाला कहा देखो ये हमारे जिम्मे नहीं है. तो सोचिए ऐसे रिश्ता चल सकता है. तो जैसे माँ बाप के मामले में बीवी बच्चों के मामले में हम जो लिमिटेड जो हक है हमारे ऊपर हम सिर्फ उतना नहीं देते हैं उसके अलावा भी ऊपर खर्च करते हैं बल्कि ज्यादा से ज्यादा खर्च करते हैं. खर्च करके खुश होते हैं, अपने से ज्यादा जाना चाहते हैं, अपने से बेहतर उनको पहनाना चाहते हैं, अपने से बेहतर हालत में और आराम में उनको रखना चाहते हैं. तो अल्लाह ताला फ़ज़ूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इसी तरह अल्लाह ताला का हक सिर्फ ज़कात से अदा नहीं हो जाएगा. ज़कात तो लाजमी फरीज़ा है, जैसे बीवी का नफ़ा वाजिब होता है, उसका मेंटेनेंस ज़रूरी हद तक वाजिब होता है, लेकिन तुम्हारे माल में ज़कात के अलावा भी हक है. इससे अल्लाह ताला राज़ी होंगे, इससे अल्लाह ताला खुश होंगे. तो ये कोशिश करनी चाहिए कि अपने माल का ज़कात के अलावा भी कुछ हक लोगों का महसूस करे, ज़रूरतमंदों का. बाज़ बुज़ुर्गों का आया खुद हज़रत थानवी रहमतुल्लाह का कि जो भी पैसा उनके पास आता 10% अलग कर देते थे. ज़कात का इसमें हिसाब नहीं था, ज़कात तो अलग है लेकिन ज़कात से हट कर जो भी पैसे उनके पास आते थे उसका 10% अलग कर देते थे कि इसको गुरबा में खर्च करना है. तो इसलिए यह भी मिजाज बनाना चाहिए, लिल्लाह फंड है, मसाजिद की तामीर है, मदरसों की तामीर है, इस्लाम की दावत में कोशिश करना है, गैर मुस्लिमों को इस्लाम से करीब करने के लिए उन पर खर्च करना है. जैसे ये दौल एहसान है माशाल्लाह, ये बहुत सक्षम खल के काम भी करते हैं, तो इन कामों में भी खर्च करना ये भी हमारे ऊपर एक हक है. और ये तजारत का अल्लाह ताला जब तजारत के ज़रिए नफ़ा दे रहे हैं तो लाजमन हमें भी कोशिश करनी चाहिए کہ اس نفے کا ایک حصہ ہم اللہ کے دوسرے بندوں تک پہنچائیں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والحمد للہ رب العالمین.
MashaAllah. So Hazrat mentioned that the third point, which is the conclusion of this program, that Allah subhanahu wa ta'ala has certain rights upon us as businessmen. And one of the rights that Allah subhanahu wa ta'ala has upon us is that we should spend in His path. Spending in the path of Allah subhanahu wa ta'ala, one is in the form of zakat, which is compulsory. And it is first, as we know, it has some specific rules and regulations that have to be upheld. Only then will it be regarded as fulfilled. For example, Hazrat says Maghrib time is around the corner. If somebody in the Maghrib time only reads Nafil Namaz in the entire duration of the time, but he doesn't read 3 rakats of Farz of Maghrib, will that be accepted from him? No. Why? Because here he was first supposed to fulfill the obligatory responsibility of the Farz. Thereafter, you can read as much nafil as you want. So the first obligation to Allah subhanahu wa ta'ala is that of zakat, and to pay the zakat correctly in the manner that is prescribed. And if it is done that way, the zakat will bring blessings, it will become a means of safety and protection from calamities. And the zakat actually is a very minimal amount. Hazrat says that the hadith of Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam states that there are many rights in a person's wealth besides zakat. There are other rights in a person's wealth besides zakat that have to be fulfilled. There are many, many other such avenues. We cannot say that we will only give zakat and that is about all. There's no other avenues of good that we are going to spend in. He says, take the example to explain it. As it says, the example of a person has a wife, married. Now, strictly speaking, there are certain basic requirements to fulfill as far as the wife is concerned. For example, she's entitled to 3 sets of clothes for the year. Don't go and say that at home, right? Because then you'll be sent out immediately. So if you say, okay, 3 sets of clothes, but now some family wedding comes up, some function comes up, etc. The wife says to the husband, please give me, you know, I need to buy some clothing, etc. Which husband is there who is going to say, no, sorry, here's the book. According to the book, you only are entitled to this much. I'm not giving you anything more. Is this going to lead to a happy home, a happy marriage, a good, happy family life? Obviously not. The rules are set out as far as what should be given to her in so far as, you know, her needs of food and that support is concerned. Now, if the wife says to the husband, you know, today I feel like eating ice cream or chocolate or something, so he takes out his book and says to her, sorry, according to this book of rights, I'm not required to provide ice cream or chocolate for you. So what kind of marriage is that? And what kind of... No husband will treat his wife in such a manner. In fact, he will get happy to spend more on her. And he'll be happier to spend on her than on himself. Like that with his children, like that with his parents, etc. So, like that, it should be with Allah subhanahu wa ta'ala. We should not take out the book now and say, well, according to the book, we're only supposed to give so much. Finish. I'm not giving anything more. No, that is not the way of a believer. We should aspire to give more in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. Hazrat says that our pious elders were people who wished to give very much in the path of Allah. Gave the example of Hazrat Thani rahmatullahi alayhi, that whatever amount used to come to him, immediately 10% was allocated to give lillah in the path of Allah besides zakat. The zakat was a thing that he used to always give. But immediately whatever income came to him, he would fix 10% and that would be taken out and that would be given to the poor or whatever other good avenues to spend in. So Hazrat says that we also need to set aside certain amount besides zakat from our businesses for good avenues, like madrasas, masjids, institutions, dawah work, inviting people to Islam, you know, attracting non-Muslims to Islam, doing philanthropical work, doing, you know, humanitarian work. These are the things that are going to attract people to Islam. And obviously all of this cannot come out from 2.5% of zakat. We're going to have a bigger budget for that than just the 2.5%. So Hazrat says that this is one important message that I want to leave you with. And we are extremely grateful to Hazrat Maulana for his wonderful words of advice and nasiha. I'm sure all our brothers found this very inspirational. Most important of all, now that we have heard this, the important thing is to, like they say, walk the talk now. To put it into practice, to implement it, to make amal upon it, to make it part and parcel of our trade and our business. Allah subhanahu wa ta'ala give us tawfiq, understanding and guidance and accept us and all, accept our coming here today, reward us for it. And we will give an opportunity, inshallah, for some questions. We have about 10 minutes. So in that 10 minutes, whatever question anybody would like to pose, inshallah, it's an opportunity for us to take.